अभी पेपर प्रेजेंटेशन की सत्र में सबका स्वागत है, क्योंकि समय की कमी है और हम सबको 1 बजे तक समेटना है। तो अभी सिर्फ 2 पेपर प्रेजेंट किया जाएगा, एक ब्रदर डॉक्टर शांतलाल भाई फ्रॉम दिल्ली एंड सिस्टर वेरोनिका फ्रॉम रशिया। सो अदर प्रेजेंटेशन विल सी व्हेनेवर टाइम इज अवेलेबल। ब्रदर शांतलाल भाई, वेर आर यू? प्लीज कम टू द स्टेज। हाँ, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन इमीडिएटली।
ओम शांति। सबसे पहले तो मैं स्पार्क विंग को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और ये स्टडी जो है, ये एक्चुअली हम कई बार मुरलीज में ये सुनते हैं बाबा जी से कि मतलब उसमें हम काफी कुछ हम कर सकते हैं। तो ये एक प्रयास था कि जो हम मतलब हम प्रकृति के ऊपर भी विजय पा सकते हैं। तो उसी को सिलसिले में एक है कि हमें एक स्टडी की है जो मतलब पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिल्ली में जैसे आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत होता है, तो हमारे वहाँ एक मंडावली सेंटर से हूँ मैं, तो हमने वो प्रपोजल रखा सुनीता दीदी जी से, इंचार्ज से, वो उन्होंने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट किया। और वो एक स्टडी है, मैं बड़ा थोड़ा टाइम है इसलिए मैं उसी के ऊपर स्ट्रेट वे आता हूँ। ये एक हमारे दिनेश भाई जी भी साथ थे, हम दोनों ने मिलकर उसमें काफी डेटा कलेक्ट किया और वो किया, उसके एनालिसिस किया। तो ये ऑब्जेक्ट इसके ये है कि हमें ऑब्जेक्टिव यही है कि इसका थ्रू राजयोग मेडिटेशन हम कैसे मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं कैसे मतलब साकाश भी मैं नहीं बता रहा क्योंकि टाइम थोड़ा है, आपको सब पता है कैसे साकाश देते हैं। और एरिया जो कवर्ड था वो पटपड़गंज एरिया था, उसमें वो उसमें मतलब मेन लोकेलिटीज जो है आईपी एक्सटेंशन और मंडावली आते हैं, और इसमें लगभग 3 लाख की पॉपुलेशन है, इससे ज्यादा ही है बल्कि, और उसमें एक मंडावली सेंटर भी है उसके अंदर। और स्टडी का जो पीरियड रखा था वो हमने 21 दिन का रखा था, दिसंबर 9 से लेकर दिसंबर 29 तक। और इसमें जो है ये एक्चुअली इससे मुझे एक आइडिया मिला, पिछले पहले अब मैंने 2018 में मतलब अटेंड किया था स्पार्क का, उसमें एक ट्रांसपोर्ट विंग और स्पार्क विंग ने ऑलरेडी एक स्टडी की थी स्कास के थ्रू के कैसे हम एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। तो उससे मुझे काफी एक मेथोडोलॉजी में भी आइडिया मिला। तो हमने 80 ब्रदर्स सिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें, मंडावली सेंटर के ही थे उसमें, क्योंकि मंडावली सेंटर काफी बड़ा है। और उनको कैसे मतलब वहां के सिस्टर्स ने कैसे वो साकाश देना है उसकी ट्रेनिंग भी दी। और 21 दिन तक उन्होंने मतलब डेली सुबह शाम जो है साकाश देना होता था मतलब उसमें। और ये अच्छी बात यह है कि वो उन्होंने एवरेज 53 मिनट्स का साकाश हर 21 दिनों का, अगर हम सबका बहन भाइयों का लगाएं तो 53 मिनट्स का वो था, जो कि काफी अच्छा टाइम है मतलब। और वीकेंड पे हम उसको रिव्यू भी करते थे, और जो फॉर्मेट दिया हुआ था डेली जिसमें वो सारा नोट करते थे कि कितना मतलब उसने टाइम साकाश दिया है। और ये है कि दिल्ली में जो डाटा का जो मिलने का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां दिल्ली में लगभग 30 स्टेशन हैं जहां पे कि मतलब हर घंटे में जो है वो पॉल्यूशन का लेवल बताते हैं, एयर पॉल्यूशन, यहाँ पे हम एयर पॉल्यूशन की बात ही कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन बताते हैं। और वो जो मतलब ये पॉल्यूशन दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही है, और इसका सोर्स ही मैंने दिया हुआ है, नेट पे अवेलेबल है, आप कभी भी हर घंटे उसका नेट पे देख सकते हैं। तो हमने 5-6 स्टेशन तो ऐसे थे जो मतलब पिछले ही साल हुए थे, उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो 24 स्टेशन लिए थे हमने जहां पे के मतलब पॉल्यूशन लेवल नापा जाता था, मिलता है मतलब अवेलेबल था डाटा, उसमें एक मंडा एक जो है वो पटपागंज एरिया का था। और हमने मतलब उसमें इन सभी 24 स्टेशन को सुबह शाम हम एक तो पॉल्यूशन का लेवल नोट करते थे मतलब 4 बजे और 8 बजे, और ये ताकि हमें एक कंपैरेटिव पता लग जाए कि मतलब उस मदर डेयरी उस पटपड़गंज एरिया का क्या है और रेस्ट ऑफ दिल्ली का क्या है, एक कंपैरिजन के लिए मतलब। और दूसरा जो था हमने उसी पटपड़गंज एरिया का पिछले साल का भी लिया था हमने डाटा, ताकि हम पिछले साल से कंपेयर कर सकें मतलब। सॉरी, और हमने इस तरह से 3 तरह के कंपेरिजन किए थे मतलब। एक तो 2019 में ही 2 कंपेरिजन तो थे हमने कि एक 2 तरह के डाटा थे, एक हमारे पास मॉर्निंग इवनिंग था, एक आवरली एवरेज था मतलब सारे 24 घंटे का एवरेज। तो दोनों को ही मतलब हमने पटपन एरिया वर्सेस रेस्ट ऑफ दिल्ली का हमने कंपेयर किया, दोनों ही तरह से, मतलब मॉर्निंग इवनिंग लेके भी और आवरली हिसाब से भी लेके, और दूसरा थर्ड जो है वो 18 के साथ कंपेरिजन किया, वो सिर्फ पटवारगंज एरिया का ही हमने कंपेयर किया। तो इसमें ये है कि आप देखें कि दो तरह के कंपेरिजन का जो हमने मैंने जिक्र किया है, 2019 में ही ये है रेस्ट ऑफ दिल्ली का जो है, अगर हम मॉर्निंग इवनिंग का एवरेज लें तो 297 यूनिट्स है, और अगर हम पटवारगंज एरिया का लेते हैं तो 271 है। इसका मतलब है कम जो है पटवारगंज एरिया का कम जो है इस आकाश से 26 यूनिट्स ऑन एन एवरेज 21 दिनों में कम हुआ है। तो ये बहुत बड़े एक मतलब अच्छा रिजल्ट था मतलब। और अगर हम परसेंटेज वाइज जाएं तो ये 9% है, और अगर हम एवरली लें तो उसमें थोड़ा सा कम है, पर उसमें भी मतलब पॉजिटिव आया है, वो रेस्ट ऑफ दिल्ली का है 267 और पटवारगंज एरिया का है 255, और 12 यूनिट्स उसमें कम हुआ है, और परसेंटेज में जाते हैं तो 4.5 है। और उन्हीं हम 3 वीक्स का देखा, वीक्स में भी मतलब किसी में भी कम नहीं हुआ, मतलब पटवारगंज एरिया का ही कम था मतलब तीनों वीक्स में। एक ऑफकोर्स वेरिएशन थी, पहले हफ्ते जो है 57 यूनिट्स से कम था, दूसरे यूनिट्स 11 यूनिट्स, तीसरे हफ्ते 9 यूनिट्स। तो इस तरह से परसेंटेज में अगर देखें तो पहले हफ्ते 20%, दूसरे हफ्ते 4% और तीसरे हफ्ते 3%। और ये ग्राफ से भी बहुत ही क्लियर है कि मतलब उसमें पटवारगंज एरिया का जो रेड है वो तीनों हफ्तों में कम है मतलब उसमें, और ये यूनिट्स में मतलब तीनों हफ्तों में, पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा था, जैसे कि वो मैंने चार्ट में भी उसमें फिगर से भी क्लियर है, तो चार्ट भी वही दिखा रहा है। ये तीसरा जो मतलब एक कंपैरिजन किया था हमने 18 के साथ किया था, वो पटवारगंज एरिया का, तो 18 में जो था 21 डेज का एवरेज जो है आवरली, ये नेट पे अवेलेबल है डाटा, ये डाटा जो है इट्स अवेलेबल, इवन यू कैन सी नाउ आल्सो, ये 288 है 21 डेज का, और 219 में 256 है। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज एवरी डे 32 यूनिट्स कम हुआ है, तो ये भी एक काफी अच्छा है मतलब, और इसमें 11% कम हुआ है। और वीक वाइज भी ये डिफरेंस है, पहले हफ्ते 11 यूनिट्स है, दूसरे हफ्ते 10 और थर्ड वीक 77 यूनिट, और परसेंटेज में 4% और 22%। वही चार्ट्स में भी वही है कि हमारा जो है 19 जो है वो जो है रेड है, कम दिखा रहा है, और दूसरा जो है वो 18 का है, वो उसमें भी वीक वाइज ही डिफरेंस है। तो इस तरह से मैं ये कि भाई है, यही है फाइंडिंग्स में कि हम वाकई हम प्रकृति के ऊपर, जैसे कि वो हमारे अभी मुरलियों में भी कहते हैं कि हम असर हो सकता है, तो इतनी 80 बहन भाइयों का जो मुरली जो साकाश का जो है वो इम्पैक्ट है। और इसका यही है कि मेरा एक इस तरह की स्टडीज और भी की जाए, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और दिल्ली में इसको हमने एक ही रीजन में किया था। मैं तो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी साकाश स्पार्क विंग से कि इस तरह का ना लार्ज स्केल पे इवन कुछ सेंटर्स में और दिल्ली में ही किया जाए, ताकि उससे कुछ हो। धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू डॉक्टर संतलाल भाई जी, बहुत अच्छा फाइंडिंग है। होप सभी ने इंस्पिरेशन ले लिए होंगे अपने अपने एरिया में कुछ ना कुछ प्रयोग करने के लिए, भले पॉल्यूशन ना हो, दूसरा कुछ प्रयोग करने के लिए, ताकि हम मिराज योग को सिद्ध कर सकें। तो अभी समय की कमी के कारण मैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए अभी मैं इनवाइट करता हूँ सिस्टर वेरोनिका, सी विल बी प्रेजेंटिंग ए पेपर ऑन एपिस्टेमोलॉजी, विच इज द साइंस ऑफ द नॉलेज। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, प्लीज केयरफुली लिसन इट। थैंक यू।
ओम शांति। वंस अपॉन अ टाइम बाबा फाउंड मी मोर देन 20 इयर्स अगो एंड इनवाइटेड for an event called New Dimensions in Science, Education and Business. And in this period, I used to swim in the ocean of this newness, and on the top of all, I realized nothing new. So today, I don't have any ambition to present something new, because epistemology, it's very known in India, less than in other countries. My educational background is linguistic, and in the previous presentations, I already done some ideas about approaches, linguistical approaches to Murli text, to knowledge in general. And in this regard, epistemology revealed as a unique science which deals with knowledge directly. Epistemology is a Greek word, actually two words. Episto is knowledge, and logos, logi, it's like meaning, word, or science. It's everything regarding knowledge. What is knowledge? What is the source of knowledge? How knowledge could be applied practically? And there is a list of very useful terminology in terminology which could help us in our researches, because we know that the capacity of a single word could be so powerful, could contain a capacity of convey an impact, that we know that each of us was awakened through only one word. It could be peaceful, or pure purity, and so on. In epistology, there are criteria of evaluation evaluation of quality or quantity. We know each research contains quantitative and qualitative approach. The quality of epistemology is truth. So everything about truth. Truth is a measure of sustainability of knowledge, and in this science, actually, there are three directions, different fields: positivism, constructivism, and pragmatism. No, we can't discuss now each of these fields, because the words themselves reveal the semantics, the meaning of the approach. Positivism insists on the existence of only one reality. Constructivism give idea of a different reality, and everything is depending on interpretation of this reality. And the last one is pragmatism. Pragmatic approach in science. Pragmatic connected with propositional intention. From intention which come from the source of knowledge. And to illustrate the tools of epistemology, we can take the example the topic or the name, the theme of our event, Sakshatkar Murt Bhav. It's from the point of from the point of view linguistical, it's not a proposition. It's just imperative. Imperative which indicate on the distance in the temporal measure of this imperative. If we want to become the image of the image of visions or the embodiment of visions, then we have to have any example or model or pattern of this truth. And the question is it really truth? It's connected with truth, this imperative. Is it real to become one who grant visions? Maybe someone of you already is in an image of visions, or you know someone who grant visions? If someone consider the self to be. Is there someone here who, someone is who grants visions already, or you know someone who is this Sakshatkar? Yes, Shiv Baba. Shiv Baba we know. And we have experience through avyakt meetings, through Brahma Baba. We have this experience to get visions. But from the point of view scientific or epistemological, it's not a justification of truth. Because the vision refers to the uniqueness, to the unique relationship between the soul and supreme soul. Yes? So, and in this regard, epistemology apply always justification as a criteria of a truth. Yes? And justification based on evidence. If we apply this terminology to gyan, to the knowledge, then our priority of our evidence is purity, because purity reveals something, yes, what has been, was done before that. Yes, it's just the result. It's thing which we can perceive through our senses, yes, through our intellect and through our senses. Yeah. So if we apply this criteria as evidence and justification, we will be more prepared for our researchers to deal with truth, because each soul has this challenge to construct the relationship with truth. And first of all, we have to realize if truth exists, if truth is only mine, yes, if truth is relative, if God is truth, and so on. And it's very interesting to analyze the oven attitude to truth, because sometimes we hidden truth, yes, because sometimes we are battling in name of truth, and how to identify truth. Yes, it's a big task actually. And if we associate God with truth and consider God to be a source of truth, yes, then we understand this line or this border which divide us as a gathering of truth from the rest of human beings who are very distant from this source of knowledge. Source of knowledge, it's very important to understand, to identify. It must be authentic source, because many scriptures and other sources of information and knowledge, they insist they are the source, or they are know the source. And this is a task of epistemology to justify the real source of truth. And the evidence must be of such a level, because in the evidence epistemology discriminate different levels. It's normal and natural. We are, how to say, we require to very very high level of evidence. Yes, like purity. Purity is a thing we can't measure with something. Yes, it's just is perceived through the senses. Yes, through the empirically. Yes, we say through the eyes, through the words, actually, vibrations. Yes, epistemology is actually mostly dealing with metaphysical science, because it's just the set of criteria and terminology. It's applied to metaphysical, not visible things, or to the reality, not visible reality, so to say. And now I just to complete my presentation, want to say that it's only the beginning of my research. It was first a temptation to collect some information of epistemology. It's as a science of knowledge, and in next year maybe, or in next period, I have curiosity how we can apply this tools of scientific tools, linguistic tools, to analyze Baba smoothly. Yes, and I hope the results will be evident and very fruitful. So, Om Shanti.
Om Shanti. Thanks, Sister Veronica. Now we'll end the session with 1 minute of meditation.